वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पहला शमूएल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन से आप आत्मिक लाभ अवश्य प्राप्त कर रहे होंगे। परमेश्वर से प्राप्त की गई आशीषों को हमसे बांटिए और लगातार प्रार्थना में रहकर सुनते रहिए सत्य वचन।
तूफान के रुख मोड़ता है, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु 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 यीशु, रिश्ता हमसे जोड़ता है, ना तन्हा छोड़ता है, रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है, यीशु यीशु मेरा, यीशु 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 मेरा, यीशु यीशु जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु यीशु मेरा, यीशु यीशु। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास सपने पाऊं, ओ जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास सपने पाऊं, बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है, बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है, यीशु 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 यीशु, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु यीशु मेरा, ये रूह में बसा है, जान में बसा है, उसकी सच्चाई जग में सता है, रूह में बसा है, जान में बसा है, उसकी सच्चाई जग में सदा है, की बातें बोलता है, राज वो गहरे खोलता है, रुकी बातें बोलता है, राज वो गहरे खोलता है, यीशु यीशु मेरा, यीशु यीशु जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु यीशु मेरा, यीशु यीशु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की दया में रह करके कुशल पूर्वक हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम शमूएल की पुस्तक, जो बाइबल की पुस्तक से है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर तो शाऊल को त्याग चुका था, अब पलिस्तियों ने उस पर आक्रमण किया तो वह बहुत डर गया। उसने परमेश्वर को जानना चाहा कि क्या करें, परंतु परमेश्वर ने उसे किसी भी माध्यम से उत्तर न दिया। अतः वह एंदोर में एक भूत सिद्धि करने वाले के पास पहुंचा और भविष्य का पता लगाना चाहा, परंतु उसका विनाश अटल था, जैसा यहोवा ने उसे कह दिया था, इस युद्ध में वह और उसके पुत्र मारे जाएंगे। इन्हीं विषयों को हमने पिछले अध्ययन में देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके माध्यम से आप हमसे बातचीत करते हैं। प्रभु, आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, विचार विमर्श करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए कि आप एक एक के जीवन में कार्य करें, उनकी आत्मिक आँखों को, कानों को, हृदय और विचारों को खोल दें, ताकि प्रत्येक जब आपके वचन को सुनते हैं तो निश्चित रूप से उसे समझ सके, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चलने पाएं। हमारे प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, दुखी और परेशान हैं। पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सुधि लें। धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आइए हम आज अध्याय 29 से अध्ययन को आगे बढ़ाएं। अध्याय 29 में पलिस्तियों के मध्य दाऊद का उल्लेख है। अध्याय 27 में हमने देखा था कि दाऊद शाऊल के कारण ऐसा निराश हुआ कि इसराइल को छोड़कर पलिस्तियों के देश में चला गया। परमेश्वर ने उसको वहां जाने के लिए नहीं कहा था, ठीक वैसे ही जैसे अब्राहम को भी नहीं कहा था। मेरे मित्रों, पलिस्ती दाऊद के जनों के वैरी थे। दाऊद वहां कुछ समय रहा और गत के राजा का अच्छा मित्र बन गया। गत का राजा आकीश पलिस्तियों के हाकिमों में से एक था, और जब पलिस्तियों और इसराइलियों में युद्ध हुआ तब दाऊद की स्थिति दुविधाजनक थी, क्योंकि दाऊद तो पलिस्ती राजा के साथ निष्ठा निभाना चाहता था, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद अपने ही लोगों पर आक्रमण करे। मित्रों, दाऊद यहां चूकने से बाल बाल बचा। यदि परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता तो दाऊद अपने इस काम से जीवन भर पछताता। मेरे मित्रों, क्या हमें कभी बोध होता है कि परमेश्वर कितनी बार हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है? हम कभी कभी परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमाएं पार कर जाते हैं और हमें जहां होना है वहां हम नहीं रहते, और जो हमें करना नहीं है हम वही करते हैं। कभी कभी हम न्याय करने में चूक जाते हैं तो परमेश्वर हस्तक्षेप करके हमें ऐसे भयानक पाप से बचा लेता है कि हमें आजीवन पछतावा ना हो। मेरे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में देखकर ऐसे समयों का स्मरण कर सकते हैं। आइए हम पहला शमूएल 29 अध्याय उसके 1-2 पद को पढ़ें। लिखा है, पलिस्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इसराइली इज़राइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब पलिस्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए, और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। मेरे मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि युद्ध के लिए दाऊद और उसके योद्धा पलिस्तियों के साथ चल रहे थे। पलिस्तियों के हाकिम दाऊद को जानते थे। जब उन्होंने देखा कि दाऊद उनके साथ चल रहा है तो उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। यह स्वाभाविक ही था। यदि आप भी अपने बैरी को अपने साथ लेकर के चलते हुए देखें तो निश्चय ही सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वह आपकी ओर से है या किसी दूसरे की ओर से, और कहीं ऐसा ना हो कि वह पीछे से आप पर आक्रमण कर दे। आज भी ऐसा मसीही भाइयों में होता है। मित्रों, जब कोई व्यक्ति आपसे मित्रता करता है जो मित्रता की आवश्यकता नहीं होते हुए भी, तब यह जान ले कि कुछ तो गड़बड़ी है। तो आप भी सोचने पर बाध्य हो जाते हैं कि वह वास्तव में आपका मित्र है या उसके मन में कुछ गुप्त योजनाएं हैं। इसराइल से युद्ध करने के लिए पलिस्ती दाऊद पर भरोसा नहीं करते हैं। हम पहला शमूएल 29 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, तब पलिस्ती हाकिमों ने पूछा, उन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? आकिश ने पलिस्ती सरदारों से कहा, क्या वह इसराइल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया है। मेरे मित्रों, गत का राजा आकिश दाऊद में कोई बुराई नहीं देख रहा था, क्योंकि दाऊद ने उसके साथ निष्ठा निभाई थी। दाऊद ने उसकी जड़ खोदने का कभी भी प्रयास नहीं किया था, और वास्तव में दाऊद ऐसा अनिष्ट व्यक्ति था भी नहीं। मेरे विचार में हमारे मसीही क्षेत्र में त्रासदियों में एक यही है कि कुछ लोग अन्य विश्वासियों की जड़ खोदते हैं। हम पहला शमूएल 29 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं, तब पलिस्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है, वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा, कहीं ऐसा न हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए, फिर वह अपने स्वामी से किसी रीति से मेल करे, क्या लोगों के सिर कटवा कर न करेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पलिस्तियों के हाकिमों ने यही तर्क किया, और उनका सोचना सही भी था, और हो सकता था कि दाऊद शाऊल से समझौता करना चाहता और पलिस्तियों के विरुद्ध इसराइल के साथ होकर लड़ने से अच्छा तरीका और क्या था। इस प्रकार शाऊल से निश्चय ही मेल हो जाता, क्योंकि वे दाऊद को घनिष्ठता से नहीं जानते थे, और इसलिए उनके इस निर्णय को दोष नहीं दिया जा सकता था। मित्रों, हम पहला शमूएल 29 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्या यह वही दाऊद नहीं जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे कि शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है। मेरे मित्रों, इन पलिस्ती हाकिमों ने दाऊद के बारे में सुना था, और वे जानते थे कि दाऊद अजय बैरी है, अतः मेरे विचार में उनका निर्णय तर्क सम्मत और बुद्धिमानी का था, परंतु आकेश को दाऊद पर पूरा भरोसा था, जैसा कि आज भी बहुत सारे लोग एक दूसरे पर अर्थात दुश्मन पर भी भरोसा करते हैं। हम पहला शमूएल 29 अध्याय 6-7 पद में पढ़ते हैं, तब आकेश ने दाऊद को बुलवाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना में तेरा मेरे संग आना जाना भी मुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया है तब से लेकर आज तक मैंने तुझ में कोई बुराई नहीं पाई, तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते, इसलिए अब तू कुशल से लौट जा, ऐसा ना हो कि पलिस्ती सरदार तुझ से अप्रसन्न हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि आकिश को दाऊद पर पूरा भरोसा था, बहुमत उसके साथ नहीं था, अतः मतभेद से बचने के लिए आकिश दाऊद से आग्रह करता है कि वह चला जाए। मेरे मित्रों, यह वास्तव में परमेश्वर का ही काम था, इस प्रकार दाऊद अपनों ही से युद्ध करने से बचाया गया। हम पहला शमूएल 29 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, दाऊद ने आकिश से कहा, मैंने क्या किया है और जब से मैं तेरे सामने आया तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने ना पाऊं। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा शाऊल दाऊद का बैरी था। दाऊद अपने लोगों के विरुद्ध खड़ा नहीं होता, तथापि अपना देश त्यागने में दाऊद के विश्वास की कमी का अर्थ था कि वह परमेश्वर की इच्छा से बाहर जा रहा था, इसके कारण उसके जीवन में पाप के प्रवेश का द्वार खुला। मेरे मित्रों, रोचक बात तो यह है कि जब परमेश्वर का संतान परमेश्वर की इच्छा से बाहर कदम उठाता है तब वह उद्धार से तो वंचित नहीं होता, परंतु समस्या में अवश्य पड़ जाता है। एक बार एक युवक मेरे पास आया, उसने परमेश्वर की इच्छा से बाहर जीवन व्यतीत करते हुए एक अविश्वासी स्त्री से विवाह किया। उसका जीवन उस दिन से मेरी उसके साथ भेंट होने तक नरक बना हुआ था। उसके लिए एक ही समाधान था कि वह तलाक ले ले। मैंने उसे तलाक में पहल करने से मना किया और कहा कि यदि वह जाना चाहती है तो उसे जाने दे, परंतु उसके साथ बना रह। परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकलने में ऐसा ही होता है, मैंने उसे समझाया। परमेश्वर की संतान की इच्छा के बाहर उद्धार से वंचित तो नहीं होगी, परंतु निश्चय ही वह ऐसी स्थिति में होगी जिसे वह सोचेगी ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। परमेश्वर की इच्छा से बाहर आप सदैव समस्या में पड़ेंगे। मेरे मित्रों, दाऊद परमेश्वर की इच्छा से बाहर था, और यदि परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता तो वह भयंकर पाप कर बैठता। हम पहला शमूएल 29 अध्याय के 11 पद में पढ़ते हैं, इसलिए बिहान को दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर पलिश्तियों के देश को लौट गया और पलिश्ती इसराइल को चढ़ गए। मित्रों, इसराइल उत्तर में है, यह एस्द्रिलोन की घाटी में वरन उसका भी भाग है। धर्मशास्त्र के अनुसार हर्मगिदोन का अंतिम युद्ध यही होगा। आज वह अत्यधिक उपजाऊ घाटी है। पलिश्तीर इसराइल की ओर बढ़ते हैं और दाऊद अपने साथियों के साथ सिगलक को लौटता है। यह आनंददायक यात्रा नहीं थी, जैसा हम आगे देखेंगे। हम देखते हैं कि दाऊद अमालेकियों से युद्ध करता है। उन्होंने सिगलक को नाश किया था। मेरे मित्रों, जब दाऊद उसके साथी नगर से बाहर थे, तब दक्षिण से बैरियों ने अमालेकियों ने फलिस्ती क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और सिगलक को हानि पहुंचाई। सिगलक दक्षिण में बीरशिबा से भी नीचे की ओर फलिस्ती क्षेत्र में था। तब हम आगे पढ़ते हैं जो अध्याय 30 से है, पहला शमूएल 30 अध्याय उसके 1-3 पद में। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलक पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलक पर चढ़ाई की और सिगलक को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई थी। मेरे मित्रों, क्या आप दाऊद और उसके 600 साथियों की दशा समझ सकते हैं? वे अपने परिवारों के साथ शांति पल व्यतीत करने घर लौटे तो देखा कि वहां सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया गया है। उनके बच्चे और पत्नियां आदि सब नष्ट किए जा चुके हैं। उनका संहार किया जा चुका है। वे अत्यधिक खेदित थे। पहला शमूएल 30 अध्याय उसके 4-5 पद में हम पढ़ते हैं, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। और दाऊद की दो स्त्रियां इज़रेली अहिनोम और कर्मेली नबाल की पत्नी अविगेल बंधुआई में गई थी। यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद के लिए यह बड़े दुख की बात थी कि उसे बहुत आघात पहुंचा। उसकी पत्नी अविगेल भी मारी जा चुकी थी। आपको स्मरण होगा कि अविगेल एक धनवान पुरुष नाबाल की पत्नी थी। नाबाल के नाम का अर्थ है मूर्ख। उसकी मृत्यु के बाद दाऊद ने उसे विवाह किया था। वह दाऊद के जीवन में आशीष का कारण थी। हम पहला शमूएल 30 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद अत्यधिक निराश था। उसने अपने प्रियजनों को ही नहीं खोया था, उसके लोग उसे पत्थरवाह करना चाहते थे। उन्होंने दाऊद को दोषी ठहराया कि वह सिकलक छोड़कर पलिस्तियों के साथ क्यों गया था। यह दाऊद की महान चूक थी। लोगों के मन में दाऊद की छवि एक युवा चरवाहे की ही बनी रहती है जिसने गोलियत का संहार किया था या बादशाह के साथ व्यभिचार की बात की। उसके बारे में सोचते हैं, वे भूल जाते हैं कि दाऊद भी हमारी नाई एक साधारण मनुष्य था। उसने हमारे समान अनेक गलतियां की। इसराइल त्याग पलिस्तियों के देश में जाना उसकी बड़ी भूल थी। अब उसे पत्थरवाह करने की योजना बनाई जा रही थी। लोग अपने बेटे बेटियों के कारण शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। मेरे मित्रों, वे अपनी पत्नियों के विषय चिंतित नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे सोचते थे कि उनकी पत्नियां मारी जा चुकी हैं और उनकी संतान दास बना ली गई थी। दाऊद का दुख दोनों ओर से था। उसके अपने प्रियजन मारे गए और उसके साथ ही अपने प्रियजनों के विनाश के दुख एवं क्रोध के कारण दाऊद को पत्थरवाह करना चाहते थे। मित्रों, यहाँ एक अत्यधिक उत्तम वाक्य है। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब परिस्थितियां आनंद और सुख की नहीं रहती। कभी कभी हम अपने आप को अंधकार में पाते हैं, जैसे दाऊद का था। परिस्थिति आशा से बिल्कुल विपरीत या रहित दिखाई देती है। ऐसे में हम क्या करते हैं? क्या हम निराश हो जाएं, हिम्मत हार जाएं, कहें कि सब समाप्त हो गया? मित्रों, यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हम परमेश्वर में हियाव बांधेंगे। हम ऐसे समय में उसको निहारेंगे, उससे सहायता मांगेंगे। परमेश्वर स्वयं ही हमें ऐसी स्थिति में लाता है कि हम उसे निहारें। वह हम पर स्वयं को जीवित प्रकट करना चाहता है। ऐसे ही समय में दाऊद ने अपने सर्वोत्तम भजन को लिखा है। परेशानियों में आप भजनों को पढ़कर देखें कि दाऊद कैसे परमेश्वर में हियाव बांधता था। उसने अनेक बार कहा है, परमेश्वर भला है, उसके छुड़ाए हुए कहें कि परमेश्वर भला है। जी हाँ, दाऊद ने इस बात को सच पाया। हम पहला शमूएल 30 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातर याजक से कहा, एपोत को मेरे पास ला। तब एब्यातर एपोत को दाऊद के पास ले आया। ध्यान दीजिए कि एपोत महायाजक के वस्त्र का वह भाग था जो प्रार्थना का प्रतीक था। यह वस्त्र याजक के बागे के ऊपर पहना जाता था। एपोत से पहचाना जाता था कि वह याजक महायाजक है। इस वस्त्र को वह तब धारण करता था जब वह सोने की वेदी के सामने प्रार्थना के लिए उपस्थित होता था। इसमें प्रत्येक कंधे पर एक पत्थर होता था जिन पर इसराइल के 12 गोत्रों के नाम अंकित होते थे। प्रत्येक पत्थर पर 6 गोत्रों के नाम, और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि महायाजक इसराइल को अपने कंधों पर लेकर वेदी के निकट प्रार्थना करता था। यह हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है जो हमें भी अपने कंधों पर उठाए रहता है। क्या आप खोई हुई भेड़ का दृष्टांत स्मरण करते हैं? चरवाहे ने क्या किया था? उसने उस भेड़ को अपने कंधे पर रखा और घर लाया। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप क्या हैं और कहाँ हैं, परंतु यह अवश्य जानता हूँ कि प्रभु आपको कंधों पर उठाकर वृंद में लाने के लिए सदा तैयार रहता है। देखिए, इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हम पहला शमूएल 30 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। मेरे मित्रों, एपोत के माध्यम से दाऊद ने परमेश्वर का निर्देशन खोजा। उसने अपने महायाजक से परामर्श खोजा, क्योंकि वही उसका चरवाहा था। दाऊद ने परमेश्वर से याचना की और परमेश्वर ने कहा कि वह वैरी का पीछा करे। हम पहला शमूएल 30 अध्याय 9 और 10 पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नाम नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे वे बसोर नाले के पार न जा सके और वे वहीं रहे। मित्रों, सब कुछ लूट लिया गया था। ये 200 पुरुष पूरी तरह से थक कर चूर हो गए थे, क्योंकि उन्हें 2 गुना यात्रा करनी थी। हम पहला शमूएल 30 अध्याय के 11 पद में आगे पढ़ते हैं, उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने खाया, तब उसे पानी पिलाया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्ग में उन्हें एक मिस्री मिला। वह बीमार था। उसने दाऊद को बताया कि वह एक अमालेकी हाकिम का सेवक था और बीमार हो जाने के कारण मरने के लिए छोड़ दिया गया था। दाऊद उस पुरुष तक तो पहुंच गया था, परंतु बैरी तक नहीं पहुंचा था। दाऊद उनके बारे में जानकारी चाहता था, अतः उस मिस्री पुरुष ने कहा कि वह उन्हें सब कुछ बता देगा, परंतु शर्त यह थी कि दाऊद उसे उसके स्वामी के हाथों में न सौंप दे। उस मिस्री ने सिकलग में आग लगाने की संपूर्ण घटना सुना दी और दाऊद को अमालेकियों तक पहुंचाया। मेरे मित्रों, अमालेकी अपने विजय और लूट का आनंद मना रहे थे और राग रंग में लीन थे। दाऊद उन पर अचानक आक्रमण करता है। हम पहला शमूएल 30 अध्याय उसके 16 और 17 पद में पढ़ते हैं, जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिस्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे थे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवान को छोड़ जो ऊँटों पर चढ़कर भाग गए उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि केवल 400 मनुष्यों के पास यातायात के साधन थे और वे दाऊद के योद्धाओं से बचकर भाग गए। युद्ध के बाद दाऊद सब के बच्चों, स्त्रियों, पशुओं और लूट के सामान के साथ सिगलग को लौट आया। अब दाऊद के जनों में मतभेद उत्पन्न हुआ कि जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया उन्हें लूट का भाग नहीं मिलना चाहिए। यहाँ दाऊद ने निष्पक्षता का एक सिद्धांत स्थापित किया, जिसके कारण वह परमेश्वर द्वारा काम में लाए जाने वाला मनुष्य सिद्ध हुआ। वे 200 जन जो यात्रा करने में सक्षम न होने के कारण युद्ध न कर पाए थे, उन्हें भी लूट का बराबर भाग मिलना था। यह दाऊद का निष्पक्ष न्याय था। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आप और मैं परमेश्वर की ओर अपने नजरों को उठाते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर अपने महान और अद्भुत कार्यों को करता है, जैसे कि उसने दाऊद के साथ में किया। यहाँ तक कि लोग उस पर पत्थरवाह करना चाहते थे, उस पर दोष लगा रहे थे, जबकि उसने भी अपने स्त्री और बच्चों को खोया था। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी ही समस्याएं आती है, अर्थात ऐसी समस्याएं जिसका हल हमें नहीं सूझता है। ऐसे समय में हम क्या करते हैं? क्या हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं? मेरे मित्र, मैं नहीं जानता कि आप किस स्थिति में हैं। हो सकता है कि आप बीमार हैं, हो सकता है कि आप अपने आर्थिक तंगी से परेशान हैं, और हो सकता है कि आप अपने पारिवारिक जीवन से परेशान हैं। मैं नहीं जानता कि आप किस स्थिति में हैं, लेकिन यदि आज आप लोगों की ओर निहार रहे हैं तो आप गलत हैं। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आज अपनी नजर को परमेश्वर की ओर उठाएं। परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, क्योंकि यह वही परमेश्वर है जिसने दाऊद की सहायता की, वह आपकी भी सहायता कर सकता है। इसी आशा के साथ आज हम अपने अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर आपकी भी सहायता करेगा। मेरे मित्रों, इस वचन पर निरंतर मनन चिंतन करें और परमेश्वर की ओर अपने नजरों को उठाएं, क्योंकि परमेश्वर भला है, वह आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
पाया है मिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है
जिंदगी मेरी।